नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट और वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। कोलकाता नाइट राइडर्स को इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली उम्मीदों को बनाए रखने के लिए अपने अंतिम लीग मुकाबले में बड़ी जीत की जरूरत है, तो वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स बुधवार को इस मैच को अपने नाम पर तालिका में शीर्ष में जगह बनाने की कोशिश करेगा। केकेआर 13 मैचों में 6 जीत से 12 अंकों के साथ तालिका में छठे स्थान पर है और अगर टीम इस मैच को बड़े अंतर से जीतने में सफल रहती है तब भी उसे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अन्य मैचों के नतीजे पर निर्भर रहना होगा। लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जगह पक्की करने से एक कदम दूर है। टीम के 13 मैचों में 16 अंक हैं और इस मैच में जीत से उसका प्लेऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा। दो बार की चैंपियन केकेआर की टीम पिछले साल फाइनल में पहुंची थी, लेकिन इस सत्र में वो लय को बरकरार नहीं रख पाई। टीम ने हालांकि पिछले दो मैचों में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत दर्ज कर अपनी उम्मीदों को बनाए रखा है। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ सफलता का श्रेय गेंदबाजी में मिश्रण करने के अपने फैसले को दिया, जिससे उनकी टीम मैच को 17 रन से जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ में बनी हुई है। इस जीत से टीम 13 मैचों में 14 अंक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद मिशेल मार्श की 48 गेंद में 63 रन की पारी के दम पर दिल्ली ने 7 विकेट पर 159 रन बनाने के बाद पंजाब की टीम को 9 विकेट पर 142 रन पर रोक दिया। शार्दुल ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैदान के दोनों ओर की बाउंड्री की दूरी में काफ़ी अंतर था। ओस और उमस के कारण परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थी। मुझे लगा कि बल्लेबाज बड़े बाउंड्री की ओर भी छक्का लगा सकते हैं, ऐसे में मैंने गेंदबाजी में मिश्रण कर बल्लेबाजों को चकमा देने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैंने गेंदबाजी में नकल बॉय, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए ऑफ कटर, सीम, बाउंसर और हार्ड लेंथ का इस्तेमाल किया। शार्दुल ने इस मौके पर टीम के अन्य गेंदबाजों की भी तारीफ की और कहा कि लगातार विकेट गिरने के कारण पंजाब की टीम लक्ष्य का पीछा करते समय कभी भी मैच में दबदबा नहीं बना सकी। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में दिल्ली कैपिटल्स ने 16 मई को रात पंजाब किंग्स को 17 रन से हराया। इस जीत के बाद उसने आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाएं जिंदा रखी। हालांकि मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत का व्यक्तिगत प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वो 3 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हुए, इसमें उनका एक छक्का भी शामिल है। वो जब आउट हुए तब टीम के खाते में 12 ओवर में 107 रन थे। उनका ऐसा प्रदर्शन देखकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि ऋषभ पंत ने टीम की बजाय अपने ईगो को अहमियत दी। प्रज्ञान ओझा ने तो यहां तक कह दिया कि 4 गेंद में 4 छक्के लगा देने से कोई मैच विनर नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, दूसरी बात, उससे बड़ी जो गलती मैं मानूंगा वो कप्तान की है। कप्तान के रूप में आपका दायित्व बनता था कि आप क्रीज पर खड़े रहें। आपकी गैर जिम्मेदाराना खेल की वजह से टीम को कितना नुकसान उठाना पड़ा। आपने छक्का मार ही लिया था, ऐसे में वो शॉट बनता नहीं था। ऋषभ पंत के इस सीजन बहुत धमाकेदार रन नहीं आए हैं, उनकी जैसी छाप है उसके अनुरूप तो बिल्कुल भी नहीं। इंडियन प्रीमियर लीग ने युवाओं और अनकैप्ड खिलाड़ियों को कुछ शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सितारों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक आदर्श मंच देने में मदद की है। 2022 के आईपीएल ने काफी युवा प्रतिभाओं को देखा है। क्रिकेट विशेषज्ञों ने इनमें से कुछ को पहले ही भारतीय टीम में जगह देने का समर्थन किया है। उन्हें अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का भी समर्थन मिला है। गांगुली विशेष रूप से दो अनकैप्ड भारतीय तेज गेंदबाजों से बहुत प्रभावित हुए हैं। मिड डे से बात करते हुए सौरभ गांगुली ने सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक के बारे में बात की। उमरान मलिक अपनी तेज गति और विकेट लेने की क्षमता के कारण आईपीएल 2022 में चर्चा का केंद्र रहे हैं। उन्होंने इस सीजन 12 मैच में 22.05 के औसत से 18 विकेट लिए। उमरान ने एक मैच में 5 विकेट भी लिए। वो अब इस सीजन में अनकैप्ड खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। सौरभ गांगुली ने अपनी लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज कुलदीप सेन का भी जिक्र किया। कुलदीप सेन ने इस सीजन 7 मैच में 8 विकेट लिए हैं। फुटबॉल की वैश्विक निकाय फीफा ने आगामी विश्व कप से पहले कैमरून को अपने राष्ट्रीय टीम में फ्रांस के पूर्व अंडर 21 खिलाड़ी जॉर्जेस केविन, एनकोडू को शामिल करने की मंजूरी दे दी। फीफा ने इस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के मामले में बदलाव की मंजूरी दे दी है। एनकोडू ने अपने मौजूदा क्लब बेसिक्टास से जुड़ने से पहले मार्सिले और टोटेनहम का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने फ्रांस की सीनियर टीम का कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया है और अपने पारिवारिक संबंधों और फीफा के नियमों के तहत वो अब कैमरून का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। इस 27 साल के खिलाड़ी को अपनी राष्ट्रीय टीम में शामिल करने के लिए कैमरून फुटबॉल संघ ने आवेदन किया था। इसका समर्थन राष्ट्रीय टीम के पूर्व महान सैमुअल इतो ने भी किया था। एनकाउडू को जून में 2023 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का क्वालिफाइंग मैचों के लिए कोच रिगोबर्ट सोंग की प्रारंभिक टीम में पिछले हफ्ते नामित किया गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।